Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
प्रकाशं मुमुक्षुरु वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिहि 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरु देव महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद का विचार प्रेमपुरी के संबंध से हो रहा है। उत्तम साधक नचिकेता और यमराज का संवाद चल रहा है। यमराज ने नचिकेता को कहा कि कोई तीन वरदान मांग लो, जिससे कि तीन रात्रि तक मेरे द्वार पर तुम बिना खाए पिए स्नान करके रहे। उसका जो मेरे पर ऋण चढ़ा है, उसका जो मुझे पाप लगा है, उसका प्रायश्चित हो सके। तीन कोई वरदान मांग लो। इसके बदले प्रथम वरदान नचिकेता ने मांगा, जो विस्तार से आप लोगों ने श्रवण किया, पितृ परितोष, शांत संकल्प स्वमना यथा स्यात्। मेरे पिता शांत संकल्प हो जाएं, स्वमन हो जाएं, जिनका क्रोध बीता हुआ हो जाएं, और वापस जब आप मुझे लौटाते हैं तो पहचान के पूर्ववत मेरे से बात करें, व्यवहार करें। ये वरदान मांगा और इस वरदान को यमराज ने बड़े सहर्ष प्रसन्नता से प्रदान भी किया। उसके बाद में उसको स्वीकृति दिया कि अच्छा, आप दूसरा वरदान भी मांग लो। नचिकेता द्वितीय वरदान मांगने से पूर्व जिसके संबंध में मांगेगा उसका लौकिक दृष्टि से महत्व यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। जिस तत्व को, जिस स्थान विशेष को, जिस परिस्थिति विशेष को, जिन साधनों से प्राप्त किया जाता है, उस साधन के संबंध में वरदान मांगेगा। लेकिन वरदान का जो प्रयोजन है वो पहले सामने रख देता है, क्योंकि जब तक प्राप्य वस्तु का महत्व सामने नहीं आएगा उसके साधन को हम महत्व नहीं दे सकते हैं। साधन को तब महत्व देते हैं जब उससे पहले साध्य की महिमा, साध्य का महत्व हमारे मन में अच्छी प्रकार से बैठा हुआ होता है। इसलिए कि साध्य इतना दुर्लभ है, साध्य इतना महत्वपूर्ण है, साध्य अवश्य मुझे प्राप्त करना ही है, तब फिर प्रश्न खड़ा होगा कि उस साध्य को पाने के लिए साधन क्या है, और फिर उस साधन को अच्छी तरह से वो ग्रहण करेगा, उसको महत्व देगा साधन को। साध्य का महत्व नहीं होगा तो तत्संबंधी साधन को भी महत्व नहीं दिया जाएगा। इसीलिए पहले उस साध्य का यहां पर वर्णन कर रहा है कि जिस साधन के द्वारा मैं प्राप्त करना चाहूंगा या जिसके लिए मांग रहा हूं, उस वरदान को मांगने से पूर्व बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर नचिकेता करने जा रहे हैं। स्वर्ग को प्रदान करने वाली जो अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या के संबंध में नचिकेता यहां पर वरदान मांगेगा, द्वितीय वरदान। जिस अग्नि विद्या का चयन करने से, अनुष्ठान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग लोक कैसा है यह बताया जाएगा। इस प्रसंग को उपस्थित करने से पूर्व एक बात जरूर ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि प्रथम वरदान में जो नचिकेता ने मांगा है वो पितृ परितोष मांगा है, उसका संबंध केवल इस लोक से है। इस लोक का मतलब अध्यात्म और भौतिक दोनों दृष्टि से आप देखेंगे तो व्यवहारिक दृष्टि से भी पितृ परितोष माने जिन माता पिता से शरीर की प्राप्ति हुई है, इस दुर्लभ शरीर को जिनसे प्राप्त किया है, इस शरीर का सदुपयोग उनके लिए हो जाए। दूसरा ये भी है कि शरीर का जितना भी संबंध है वो भौतिक प्राणियों, भौतिक पदार्थों के साथ में ही है, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई यार दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे इसको चलाने के कोई भी अन्य साधन हो, ये सारा का सारा स्थूल का संबंध स्थूल के साथ में ही होता है। तो इसलिए कल की आपको बता रहा था मैं शायद कि तीन प्रकार के हमारे अंतःकरण में दोष होते हैं, मल, विक्षेप और आवरण दोष। तो मल दोष का जो आधिक्य होता है वो व्यवहार बिगड़ने से ही होता है। मन में जो मल दोष जितना भी बढ़ेगा वो तब बढ़ेगा जब व्यक्ति वेद प्रणहित कर्म का त्याग करके और वेद निषिद्ध कर्म का आचरण करता है, धर्माविरुद्ध आचरण करता है। तब आचरण तो इसे शरीर के द्वारा ही होना है, बोलेगा तो शरीर से, देखेगा तो शरीर से, खाएगा तो शरीर से, चलेगा तो शरीर से, लेन देन होगा तो शरीर से, सारा जो व्यवहार हो रहा है वो शरीर से ही होगा। लेकिन वो होने वाला व्यवहार शास्त्रीय है या अशास्त्रीय है? शास्त्रीय व्यवहार यदि शरीर से करेगा तो उसका मल दोष हटेगा, क्योंकि सत्कर्म करने से इस शरीर के द्वारा जो चेष्टा हो रही है उसके पीछे भी मन की वृत्ति काम कर रही है, तो शरीर संबंधी कर्मों का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, क्योंकि मन भी तो इस शरीर के भीतर ही तो बैठा हुआ है। तो जिस गाड़ी में बैठते हैं वो गाड़ी कैसी है उसका प्रभाव अंदर बैठे हुए के अंदर पड़ता है। अब एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो उसकी शीतलता का अनुभव अंदर बैठा हुआ व्यक्ति करेगा, खुली गाड़ी में बैठेंगे तो बाहर की आने वाली हवाओं आदि का प्रभाव अंदर में बैठा हुआ व्यक्ति करेगा। गाड़ी जिस रफ्तार से चल रही है उसका प्रभाव भी भीतर में बैठा हुआ यात्री करेगा, वो व्यक्ति करेगा। बाहर का असर भीतर वाले पर पड़ता है। इसी प्रकार से शरीर से हम जैसा भी व्यवहार करते हैं उस व्यवहार का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। अब इस शरीर से हम शास्त्रीय दिशा में चल रहे हैं या मन वासना से जो प्रेरित मार्ग है, दिशाएं हैं, उसकी ओर चल रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, जैसा आचरण जैसा व्यवहार होगा वैसा हमारा मन बनेगा। इसलिए शास्त्रीय विधि से, शास्त्रीय कर्म के द्वारा मन का जो मल दोष है उसकी निवृत्ति होगी। अशास्त्रीय प्रवृत्ति में लग जाएंगे तो मन के ऊपर मल दोष और चढ़ जाएगा। इसलिए प्रथम वरदान के द्वारा मांगा गया है कि इस शरीर से जो होने वाले कर्म है वो शास्त्रीय कर्म हो, मर्यादित कर्म हो, क्योंकि शरीर का संबंध समाज, माता पिता आदि के साथ में है और इसका सर्वप्रथम जो संबंध होता है पिता माता आदि के साथ इसका संबंध होता है। पिता न हो तो मां से भी संबंध नहीं होगा, इसलिए प्रथम संबंध तो पिता को लेकर के मां के साथ संबंध हुआ और जिन माता पिता से संबंध हुआ है फिर उनसे संबंधित परिवार, उनसे संबंधित समाज, उनसे संबंधित देश आदि सबके साथ में संबंध होता है। तो ये सारा संसार का जो संबंध है बाह्य संबंध स्थूल संबंध वो स्थूल शरीर के साथ ही है। इसलिए स्थूल शरीर से जो होने वाला व्यवहार है वो स्थूल संसार के लिए हो जाए। व्यक्ति एक छोटे से दायरे से निकल करके और एक बड़े दायरे में, छोटे से परिवार को छोड़कर एक बड़े परिवार में, एक परिच्छिन्नता को छोड़कर के व्यापकता में आ जाए, इस दृष्टि को पाने के लिए प्रथम वरदान मांगा गया है। माने केवल मैं इस शरीर के लिए न जीऊं, सिर्फ अपने शरीर के लिए जीना यह कोई मानवता या बुद्धिमत्ता नहीं होती है। इस शरीर से उनके लिए जीना चाहिए जिनसे यह शरीर प्राप्त हुआ है, जिनसे यह शरीर संचालित हो रहा है, यह शरीर का सदुपयोग उन्हीं के लिए होना चाहिए। इसलिए पितृ परितोष रूपी वरदान मांगा है। स्थूल संसार और स्थूल शरीर का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो एक दूसरे के काम में आते हुए और जीवन को सफल बनाया जा सके इसलिए भी प्रथम वरदान मांगा गया। अब दूसरा जो वरदान आ रहा है ये दूसरा वरदान सूक्ष्मता के लिए है, जिस चीज को आपकी और हमारी आंखों ने नहीं देखा है, जिसको बताने के लिए एकमात्र शास्त्र ही प्रमाण है। मुझे कोई यहां दिखाई नहीं पड़ रहा जो स्वर्ग को देख करके आया हो और यहां पर बता सके कि स्वर्ग ऐसा है। तो जो एक शास्त्रीय है, वेदिक गम्य है, अति इंद्रिय है, उस सूक्ष्म स्वर्ग को सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब उससे संबंधित जो भी व्यवहार होगा वो सूक्ष्म के द्वारा ही होगा, वहां स्थूल का इतना महत्व नहीं है। माता पिता की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, प्राणी मात्र की सेवा करनी है, स्थावर जंगम के लिए काम में आना है, तो उसमें स्थूल शरीर ही काम में आएगा। लेकिन जो सूक्ष्म है यदि उससे संबंध करना है, उसका संबंध जोड़ना है या उसको पाना है तो उसके लिए सूक्ष्म साधन ही अपनाना पड़ेगा। सूक्ष्म के द्वारा सूक्ष्म की प्राप्ति और स्थूल के द्वारा स्थूल का व्यवहार, इस प्रकार ये दूसरा जो वरदान मांगा जा रहा है ये सूक्ष्म के प्रति मांगा जा रहा है। इसका मतलब कि इस वरदान के द्वारा जो उपासना बताई जाती है ये उपासना, ये चिंतन हमारे मन से संबंधित है। मन को भी किसी ने हस्तामलक वत किसी ने देखा नहीं है, हाथ में पड़ा हुआ आंवला हो, हाथ में रखा हुआ कोई वस्तु हो, हाथ में पड़ा हुआ पेपर वेटर सबको साफ साफ दिखाई पड़ता है। ऐसे किसी का मन भी हाथ के ऊपर रखा हुआ दिखाई पड़े कि इस रंग का है, इस रूप का है, इस आकृति का है, ये कोई नहीं कह सकता है। ये भी सूक्ष्म है लेकिन जानने में, अनुभव में आता है कि कोई है ऐसी वृत्ति जो उथल पुथल मचा देती है भीतर में, लेकिन आंख से दिखने वाली चीज नहीं है। ऐसे ही स्वर्ग आदि भी आंख से दिखने वाला नहीं है, उसका भी सूक्ष्म का सूक्ष्म के साथ में संबंध है। जो सूक्ष्म स्वर्ग आदि है जिसको सूक्ष्म के द्वारा ही भोगा या प्राप्त किया जा सकता है, उस विद्या को यहां पर प्राप्त करने के लिए नचिकेता भूमिका तैयार कर रहा है। आइए इस प्रसंग के 13वें 12वें मंत्र को हम लोग यहां देखते हैं। नचिकेता बोलता है कि स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति, न तत्र त्वम न जरया विभेति, उभे तीर्थवा सुनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। यमराज को नचिकेता कह रहे हैं कि महाराज ऐसा स्वर्ग लोक है, क्योंकि स्वर्ग लोक के संबंध में हमने सुना है या पूर्व में अनुभव किया है। ये जो स्वर्ग लोक है बड़ा विलक्षण है। स्वर्ग लोक के न भयम किंचन नास्ति, इस संसार से बिल्कुल विलक्षण है, यहां से बिल्कुल भिन्न है, जुदा है। ये संसार से देखो, तुलना करके देखना आप। यहां कहते हैं कि स्वर्ग लोक के न भयम किंचन नास्ति, स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है। न तत्र तुम न जरया विभेति, न वहां पर मृत्यु है न वहां पर बूढ़ापा है। उभे तीर्थवासनाया पिपासे, भूख और प्यास दोनों को वहां पार कर जाता है, माने न भूख लगती है और न प्यास लगती है। शोकातिग मोदते स्वर्गलोक लोके, इस स्वर्गलोक में व्यक्ति बड़ा आनंदित होता है, आनंदमय रहता है। शोकातिग है, जितना भी शोक होता है इस मृत्यु लोक में, इस स्थूल शरीर में प्राप्त होने वाला वो शोक उस स्वर्ग में प्राप्त नहीं होता है, वो शोक से अतिग है, पार किया हुआ है। न वहां कोई शोक है, न वहां भूख प्यास है, न वहां बुढ़ापा है, न वहां मृत्यु है, न किसी प्रकार का कोई भय है। तो मोदते स्वर्ग लोके, इस स्वर्ग लोक में तो मोद मानी आनंद है, मोज ही मोज है, यहां पर कोई दुख है ही नहीं, इस प्रकार का स्वर्गलोक है। अब आप तुलना करके देखिए, यहां से सब कुछ विलक्षण मिलेगा आपको। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां पर भय न हो। सर्वम वस्तु भया वह भुविंद्र नाम वैराग्यमेवा भयम, भर्तृहरि कहते हैं संसार के ऊपर जो कुछ भी प्राणी और पदार्थ है सब के सब आपको भय देने वाले हैं। कोई प्राप्त होते होने से आपको भय होगा, तो किसी का वियोग होने से आपको भय होगा, लेकिन संसार की किसी भी वस्तु से आप संबंध जोड़ोगे वहां भय अवश्य होगा। जो प्रतिकूल रूप से अनुभव कराने वाले साधन है, हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई प्राणी पदार्थ है, यदि उनका संयोग होता है, होने की संभावना भी आ जाती है, तो हमें भय होगा, दुख डर होगा, अरे पता नहीं ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा। और ऐसे अनुकूल पदार्थ प्राणी हमें प्राप्त है उसको लेकर के भी भय होता रहेगा। आज की अनुकूलता है, आज के सब कुछ ठीक है, ये अनुकूल परिवार, ये अनुकूल साधन, ये अनुकूल सुविधाएं, ये अनुकूल समय कल रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात का भय लगा रहता है। ये परिस्थिति पता नहीं कब बदल जाए, ये क्षण के बाद की हम नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा। तो अनुकूलता की प्राणी पदार्थ जो प्राप्त हो रहे हैं उनके वियोग का भय है और प्रतिकूल के संयोग का भय है, लेकिन किसी भी काल में इस संसार में व्यक्ति सर्वथा निर्भय नहीं हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का भय होगा। लेकिन कहते हैं कि जब स्वर्ग लोक में वो पहुंच रहा है तो स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, वहां कुछ भी भय नहीं है। क्यों? वहां कोई प्रतिकूल पदार्थ का संयोग होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोक की जो प्राप्ति है वो पुण्य कर्म का परिणाम है, उसका फल है। वहां सुख ही सुख प्राप्त होता है, और सुख भी ऐसा प्राप्त होता है जो शाश्वत रहने वाला सुख है, क्षणिक सुख नहीं है जो थोड़ी देर के लिए मिले और फिर वियोग का भय आ जाए, ऐसा नहीं है। बहुत लंबे माने शाश्वत का अर्थ यहां पर यह करके देखना कि मृत्यु लोक के जो प्राप्त होने वाले अनुकूल भोग संयोग आदि होते हैं उनका तो पल पल में वियोग की संभावना होती है, कब बिछुड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। परंतु स्वर्ग में जो प्राप्त होने वाला सुख है, इच्छित वस्तु जिसका संकल्प कर रहे हैं वही संकल्प मात्र से जो प्राप्त होने वाला है, वो भी लंबे अर्शे तक, लंबे काल तक, लंबे समय तक प्राप्त होने वाला है। क्योंकि मानव जीवन की अपेक्षा जो स्वर्गीय प्राप्त होने वाला जीवन है उसकी अवधि बहुत लंबी होती है। इस दृष्टि से कहते हैं कि वहां पर कोई उसे सुख वियोग का भय भी नहीं होगा, इसलिए न भयम किंचन अस्ति, वहां किसी प्रकार का न तो प्रतिकूल संयोग का भय और न अनुकूल पदार्थों का वियोग का भय होता है। न तत्र त्वम न जरया विभेति, इस मृत्यु लोक में एक ये भी भय होता है, पता नहीं कब मृत्यु ग्रस ले। मृत्यु तो पीछे दौड़ रही है, लेकिन हे यमराज, ये मृत्यु रूप तो आप स्वयं है, काल तो आप स्वयं है। ये मृत्यु चाहे भगवान को कहो या यमराज को कहो, जो अधिकारी पुरुष है उनको कहो, इस मृत्यु लोक में तो जब चाहे तब उठा लेते हैं। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध नहीं तरुण विचारे, ये न बालक देखता है, न युवा देखता है, न वृद्ध देखता है, जब मौका लगता है उसी को उठा लेता है। कोई निश्चित समय नहीं है कि इतने समय के बाद ही जाएगा, कोई जन्म लेते ही थोड़ी देर के बाद में चल बसता है, कोई वर्ष के बाद में चल बसता है, तो कोई 10 वर्ष के बाद में चल बसता है, कोई 50, कोई 100, कभी भी मृत्यु उसको ग्रस लेती है। और देखा जाए तो पल पल में ही मृत्यु ग्रस रही है। इसलिए भागवत में तो इस काल को, मृत्यु को कहा गया व्याल। व्याल बोलते हैं सर्प को। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतव। ये जो काल है, ये व्याल है, ये सर्प है, और प्रतिपल ऐसे निगल रहा है, निगल रहा है, जैसे सर्प चूहे या मेंढक आदि को निगलता है। देखो, सर्प भी निगलता है और शेर भी निगलता है, लेकिन दोनों के खाने में, ग्रहण करने में बड़ा अंतर होता है। शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली आदि जो भक्षक जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वो किसी भी प्राणी के शरीर को जब खाएंगे तो उसको नोच नोच करके खाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, साबुत को नहीं निगल जाते हैं। मगर सर्प जब निगलता है तो कोई टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं निगलता है। सर्प जिसको निगलेगा, चूहे मेंढक आदि को, साबुत को ही निगल जाता है। ऐसी स्थिति होती है कि एक सर्प मेंढक को पीछे से पकड़ करके निगल रहा है, बस निगलते 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 केवल उस मेंढक का, सर्प के मुंह से सिर्फ उसका मुंह बाहर रह गया है, बाकी तो सब सर्प के मुंह में जा चुका है। चूहे को निगल रहा है, साबुत निगलता, मुंह मुंह बाहर रह गया, पीछे की ओर से सर्प निगलता है, सामने से नहीं पीछे से निगलता है, पूरे मेंढक को निगल गया और मेंढक का मुंह मुंह सर्प के मुंह से बाहर रह गया है। तब भी मेंढक ने मुंह फाड़ रखा है, कोई मच्छर आवे तो निगल जाऊं, यह स्थिति है। गजब है, काल ऐसे निकल रहा है, पूरा मेंढक काल रूपी सर्प के भीतर में जा चुका है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि कहां है? वो किसी का काल बना हुआ है। यह संसार की बिल्कुल ऐसे ही दशा है। तो जैसे सर्प मेंढक को, साबुत को निगल रहा है, ऐसे ही ये काल, ये मृत्यु इस मानव को भी, साबुत को निगल रहा है। आप देख लो, जिस दिन पैदा हुए थे तब से निगलना शुरू किया, निगलते 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 आखिर स्थिति समय आ जाता है, बस पने को साबुत निकल गया, जवानी को साबुत निकल गया, बुढ़ापे को भी निकलते जा रहा है, लेकिन इंसान की दशा वही है जो मेंढक वाली है। आप देख लो, वो की वो तृष्णा, वो की वो कामना, वो का वो भटकाव चलता रहता है। तो काल एक ऐसा निगलने वाला है, पता ही नहीं चल रहा कि हमको निगल रहा है। परंतु सज्जनों कहते हैं कि जो स्वर्ग लोक है, यमराज बोल के लिए ये नचिकेता बोल रहे हैं कि हे यमराज, उस स्वर्ग लोक में आप इस प्रकार से किसी को ग्रस नहीं सकते, वहां आपकी भी दाल नहीं गलती है, क्योंकि स्वर्ग लोक जो प्राप्त हो रहा है वो बहुत लंबे समय तक अपने मानव जीवन में किए हुए जो शुभ कर्म है, जो उसकी शुभ साधना है, उसका परिणाम है। इसके लिए जल्दी से आप भी उसका वहां कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए कहते न तत्र त्वम यमराज, आप भी नहीं है, अर्थात वहां मृत्यु नहीं है, पल पल में मरने का डर, कोई भय नहीं होता है, न जरया विभेति। इस संसार में यहां पर जरा का, बुढ़ापे का सबको डर लगता है, वो बहुत डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि खतरनाक होता है। और ऐसा बुढ़ापा जब स्वयं अपना शरीर ही अपना साथ न दे, कोई व्यक्ति ने कभी किसी मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना नहीं की होगी, हे भगवान जल्दी से बुढ़ापा दे देना ताकि आराम से घर में बैठेंगे, किसने प्रार्थना किया? कोई बुढ़ापे को मांगता नहीं, बल्कि भगवान भेजते हैं कि जरा सावधान हो जाओ, पहले नोटिस आ रहा है, बाल सफेद करना शुरू कर दिया, दृष्टि कमजोर करना शुरू कर दिया, ये नोटिस आते हैं कि बुढ़ापा आ रहा है और आगे की तैयारी करनी है तो अभी से कर लो। जब तक शरीर स्वस्थ प्रसन्न है तब तक आगे की तैयारी कर लो। जब जर्जर हो जाएंगे, गर्दन झुक जाएगी, कमर झुक जाएगी, वधिर हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, शरीर काम नहीं करेगा, और फिर कहे कि अब साधना में लगो, बड़ी मुसीबत हो जाएगी, नहीं हो सकती है। वो तो दशा वो होगी, वो एक महात्मा सुनाया करते थे, बड़ा अजीब दृष्टांत है पर बात बड़ी अच्छी लगती है हमको। कहा कि भगवान ने जब सृष्टि का सर्जन किया ना, तो मनुष्य को खाली 20 वर्ष की उम्र दी, लेकिन मनुष्य को संतोष नहीं हुआ। उसने देखा कि मेरे से ज्यादा उम्र तो एक पशु को, एक बैल को है, मेरे से ज्यादा जिंदगी एक ऊंट को है, मेरे से ज्यादा जिंदगी एक कुत्ते को है, मेरे से अधिक जिंदगी अन्य अन्य प्राणियों को दी हुई, एक पक्षी को, बगुले को दी हुई है, कैसे मैं संतोष कर लूं। विधाता के पास में गया और कहा कि क्या आपने मेरे साथ ख्याल खिलवाड़ किया है, एक बैल को मेरी दुगनी जिंदगी दी, 40 वर्ष का बनाया मुझे 20 वर्ष का, एक कुत्ते को आपने 40 वर्ष बना दिया मुझे सिर्फ 20 वर्ष का, एक बगुले को आपने 40 वर्ष की जिंदगी दी मुझे 20 वर्ष, ऊंट जैसे प्राणी को आपने 40 वर्ष की जिंदगी दी मुझे 20 वर्ष, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे तो ज्यादा जिंदगी मिलनी चाहिए। विधाता कहने लगे कि मैंने तो निर्धारित कर दिया मेरे लेख बदलेंगे नहीं, परंतु तुम अपने पुरुषार्थ अपने बुद्धि बल से यदि जिंदगी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो। कैसे बढ़ाऊं, मैंने जिनको दी है तुम उनसे उधार ले लो, उनसे मांग लो, वो बड़े परोपकारी जीव है तुमको दे देंगे, मैं नहीं बढ़ा सकता लेकिन तुम बढ़वा सकते हो, जिनको दी उनसे ले लो। सोचा है तो बहुत अच्छी बात है। वो मनुष्य पशु के पास में गया, बैल खड़ा था, उस बैल को कहने लगा, रे बैल पहले कोई पाप किया तूने इसलिए बैल की जिंदगी मिली है, किसान कंधे पर जुआ रख करके दिन भर हल चलाएंगे, खेत पर गाड़ी के जोतेंगे, पीछे से डंडा मारेंगे, लकड़ी मारेंगे, बांध करके रखेंगे, पराधीन रहोगे, ऐसी जिंदगी में क्या करना है। वो बैल ने कहा क्या करूं, वो तो प्रारब्ध से मिली जिंदगी भोगनी पड़ेगी, भोगनी तो पड़ेगी लेकिन 40 वर्ष तक, जल्दी भोग करके क्यों नहीं निपट लेते, क्या करूं, भगवान ने इतना ही दिया, नहीं नहीं तुम चाहो तो दान दे सकते हो, 20 वर्ष में ही तुम्हारा ये सारा बंधन कट जाएगा, दुखमयी जिंदगी छूट जाएगी, इसलिए 20 वर्ष मुझे दान में दे दो, मैं इंसान हूं।